मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 11 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मोनाल सिंह, आप दिल्ली से हैं, और रितु सैनी, आप टांडा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो मोनाल और रितु, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है, और सूचना ये है कि YouTube में हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम डाला है कि जो टेस्ट सीरीज, अभी जो प्रीलिम्स के आपके एग्जामिनेशन होने हैं उसके लिए आप सब ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, या प्रश्न जो भी आपको मॉडल क्वेश्चंस मिल जाते होंगे उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, थोड़ा सा वक्त उधर भी आपने डाइवर्ट किया होगा। तो दरअसल ये जो टेस्ट सीरीज होती है या जो टेस्ट पेपर होते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना चाहिए का यहां मेरा मतलब है कि आप कैसे इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं, आप कैसे इनके साथ व्यवहार करें कि इसका फायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल सके। इसको आधार बना करके एक प्रोग्राम YouTube पर डाला गया है और मैं चाहूंगा कि आप सब, खासकर वे स्टूडेंट जो अभी जून में एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, वो इसे जरूर एक बार देखें। हो सकता है कि इसमें उन्हें अपने लिए कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें मिल जाएं। मित्रों, इस सूचना के बाद मैं आपको इस बात की सूचना दे देता हूं कि आज का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय में आज हम विश्व व्यापार संगठन पर थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं, जबकि आज दूसरी खबरें कुछ विशेष ज्यादा है नहीं। दोस्तों, एक न्यूज आपने सुनी होगी, वो खासकर नीति आयोग फोरम की बैठक को लेकर है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर हो रही है। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी भारत, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब से नई सरकार आई है मैं तब से निरंतर इस बात को महसूस कर रहा हूं कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन पर उनका खास ध्यान है, उनको वो तरजीह दे रहे हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य बात है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सामान्यतया अभी तक नॉर्थ ईस्ट, सामान्यतया की मैं बात कर रहा हूं, हमारे उतने प्रोमिनेंटली हमारे मेन स्ट्रीम में शामिल करने की बात नहीं हो रही थी। वो हमारे देश का हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहां से इतनी हमारी विदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं, वहां इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम में उनको लाने में आप कह लीजिए कि अभी तक थोड़ी सी कोताही तो जरूर हुई है। अब ये बात अलग है कि उसके भी अपने कुछ रीजंस हैं, कुछ अपने लिमिटेशंस रहे हैं, जैसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते ऑटोमेटिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रह जाती है। कनेक्टिविटी में आप देखिए तो वहां कोई आपको विशेष एयरपोर्ट दिखाई नहीं देंगे, रेल से भी उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कों से भी बहुत ज्यादा उनका आपस में जुड़ाव नहीं है। जबकि आप देखिए कि जो दूसरे बगल के जो देश हैं वो बिल्कुल उनके पड़ोस में है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब उनसे सटे हुए हैं। और अब जबकि अभी की सरकार उसको सीधे सीधे अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर के आ रही है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है, तो स्वाभाविक है कि वह नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं उनको तरजीह दें। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस बार जो योजना पत्रिका है उसका जो स्पेशल इश्यू आया हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट पर ही आया हुआ है। यहां मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जो योजना मैगजीन है और जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन है ना, ये प्राइवेट मैगजीन नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन होने के नाते स्वाभाविक है कि सरकार जिन चीजों को महत्वपूर्ण समझती है, जिन टॉपिक्स को, या उसे लगता है कि नहीं इसके बारे में हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए, उनको वो तरजीह देती है, प्राथमिकता देती है, और जो बहुत ही स्वाभाविक भी है। इसमें कोई आलोचना और प्रत्यालोचना की बात नहीं है कि सरकार अपना प्रचार कर रही है, प्रचार कर रही है ठीक है, वो तथ्य दे रही है, उन तथ्यों को आप एग्जामिन कीजिए। भाई आप अगर मान लीजिए कि मैं सरकार की आलोचना करना चाह रहा हूं, समीक्षा करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे तथ्यों की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो कम से कम तथ्य तो मुझे इसमें मिलेंगे ही, तो तथ्यों की फिर आप अपने ढंग से आलोचना समालोचना कर लीजिए, तो तथ्य तो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, योजना पत्रिका और कुरुक्षेत्र में जो टॉपिक्स आते हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, मान करके चलिए कि वो आपके सिविल सर्विस के स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पिकअप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, वो इस साल के सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, तो आप सब इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसकी जो थोड़ी सी बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, बट नेचुरल है कि आपको मैगजीन में वो बैकग्राउंड नहीं मिलेगी। मैगजीन में तो लेटेस्ट चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, और उनको मैगजीन पढ़ने के बाद आप एक कुछ अच्छे से नोट्स, अच्छे से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और खासकर जो सैटरडे को हम लोग जो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैं नॉर्थ ईस्ट पर आर्टिकल भी प्रोवाइड करूंगा, एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी, और उसमें से आप अपनी जरूरत की चीजें छांट सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो उसकी बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आप थोड़ा सा पहले से तैयार कर लें, तब आप उन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। बैकग्राउंड कहने का मतलब है कि एक तो आपको मैप पर बहुत अच्छे से पकड़ आपकी मैप की होनी चाहिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो कहां हैं, किस तरीके से हैं, उनकी सीमाएं कहां कहां किस किस से मिलती हैं, इस पर आपको बहुत अच्छी पकड़ अपनी बना लेनी चाहिए। मित्रों, आपको मालूम है कि सेवन सिस्टर्स का हम नाम लेते हैं, सेवन सिस्टर्स के नाम से फेमस हैं, लेकिन बेसिकली जब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आठ बहनें हैं। अब उसमें सिक्किम को सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं किया गया है, तो सिक्किम को भी मिला लीजिए तो आठ स्टेट हो जाते हैं। उसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और सिक्किम है। ये चार स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसके बाद आप मैप में देखिए कि ये कैसे शुरू होते हैं और कैसे जा जा करके कहां कहां इनकी बाउंड्रीज है, किस किस से मिलते हैं। तो होगा क्या कि इनको जानने के बाद जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इनकी लोकेशंस को समझ लेने के बाद, तो वो आर्टिकल्स आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, तभी सही मायने में आप आर्टिकल्स के साथ न्याय भी कर सकेंगे। अदरवाइज तो यही होगा कि ठीक है, आपने पढ़ने के लिए पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। तो मित्रों, इस पर मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कर रहा हूं, आप खुद अभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप अपने ढंग से अपनी तैयारी कर लेंगे। आपने देखा कि नीति आयोग जो फोरम है उसकी अगरतला में बैठक हुई है, जिसमें हमारे नीति आयोग के लोग गए हुए हैं, हमारे मिनिस्टर भी गए हुए हैं, जितेंद्र सिंह जी इससे रिलेटेड हैं, और उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि सरकार क्या क्या उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कर रही है। और उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक पर्यटन निगम बनाया गया है, पर्यटन निगम, यानी कि जो पूरे के पूरे आठ राज्य हैं आपस में मिलकर के शायद मुझे लगता है कि वो एक कॉरपोरेशन तैयार करेंगे, ताकि उस क्षेत्र में अगर कोई पर्यटन के लिए जाना चाहे तो उसे अलग तरीके की कोई व्यवस्था न करनी पड़े, निगम के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं एक ही तरह से, एक ही जगह से हो जाएं। और डेफिनेटली वहां टूरिज्म का तो अद्भुत संभावनाएं टूरिज्म की है, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आप देखते हैं बांस को लेकर के वहां अभी सरकार ने काफी योजनाएं बनाई हैं, और एक इसी तरह से एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी वो खासकर बेम्बू का लेकर के सरकार आई है, हैंडीक्राफ्ट वहां का बहुत ही बेहतर है आप जानते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनको बढ़ावा देकर के नो डाउट कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। नेशनल बैम्बू मिशन उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है, वहां के लिए बहुत उपयोगी वो एक तरह से अभियान है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल मैंने इस विषय का चुनाव इसलिए किया है, न्यूज में आपने सुना कि जो चीन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो शिकायत दर्ज कराने जा रहा है। शिकायत इस बात को लेकर के कि आपको मालूम है पिछले कुछ समय से कि अमेरिका ने जो चीन से जो इस्पात और एल्युमिनियम आयात होता था, चीन से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी जो आयात हो रहा था उस पर उसने आयात शुल्क लगाया है। इसके आप कह लीजिए कि इससे एक प्रकार से पूरी दुनिया में ट्रेड वार की शुरुआत हो गई है, व्यापारिक युद्ध, व्यापार युद्ध आप कह लीजिए, उसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं मित्रों, तो अब देखिए कि वो चीज कैसे आगे शेप लेती है। नो डाउट कि भारत भी इसको लेकर के चिंतित है। अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास गया है, अब देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, आगे चल करके यह घटना क्या रूप लेती है, वी डोंट नो। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया, आप कह लीजिए कि जो विश्व समुदाय है, इस तथ्य को लेकर के काफी चिंतित है कि कहीं ऐसा न हो कि बात इतनी बढ़ जाए कि ये जो वैश्वीकरण का मामला है यही खटाई में पड़ जाए। खैर मित्रों, इसी को आधार बनाकर मैं आज थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें बताना चाहूंगा, बहुत ही सामान्य तरह की जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि आप देखिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में वो खत्म हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया था और आज आपको जो विश्व स्तर की संस्थाएं दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद बननी शुरू हो गई थी। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद अस्तित्व में आया, आप देखिए वर्ल्ड बैंक इसके बाद अस्तित्व में आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं आप, वो उसके बाद अस्तित्व में आया। और इसी दौर में एक और अस्तित्व में आया था जिसे हम कहते हैं गैट, GATT। गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए जनरल एग्रीमेंट मतलब कुछ देशों ने मिलकर के एक सामान्य तरीके से समझौता किया, एग्रीमेंट किया। किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट किया? ऑन टैरिफ यानी कि जो शुल्क लगाया जाता है, और व्यापार, ट्रेड, वाणिज्य, वाणिज्य और शुल्क पर उन्होंने समझौता किया। ये हुआ फ्रेंड्स 1948 में, और यही जो गैट है 1995 में जाकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूं कह लीजिए कि WTO ने गैट को 1995 में रिप्लेस कर दिया। कुल मिलाकर के ये है। अब देखते हैं कि 1990-91 के बाद से लगातार दुनिया में वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। हमने भी 1991 में ही अपने यहां उदारीकरण की प्रक्रिया ओपनली शुरू की, और भारत तो जब ये गैट बना था तब भी शुरुआत में ही उसका सदस्य बन गया था, और जब गेट को WTO ने रिप्लेस किया तब भी भारत उसका सदस्य बन गया। तो मतलब भारत शुरू से ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय रहा है। दोस्तों ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सरकारें जो राष्ट्र हैं इसके सदस्य हैं, और इसका काम है बहुत ही सिंपल सा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसको रेगुलेट करना। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और ये तीन क्षेत्रों में निगरानी रखता है, तीन क्षेत्रों में काम करता है। एक वस्तुओं का व्यापार, दूसरा सर्विसेज सेवा क्षेत्र, और तीसरा है बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मित्रों अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं यहां केवल एक तथ्य बताकर के इस टॉपिक को यहां समाप्त करना चाहूंगा। और दोस्तों वो ये कि एक टॉपिक बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, भारत और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत का इसके साथ क्या रिश्ता है, भारत किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, भारत का क्या रोल है, ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है। तो मैं आपको केवल विषय उपलब्ध करा रहा हूं। इस टॉपिक पर आप सब अपने अपने ढंग से तैयारी करके देखिए, यदि मुझे कभी कोई वक्त मिला या कोई अवसर आया कह लीजिए, तब मैं डेफिनेटली इस पर बातें करूंगा। राइट दोस्तों, तो अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स पर। दोस्तों न्यूज़पेपर्स में मैं आज आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो नेपाल को लेकर के है जिस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, नेपाल पर कुछ और आर्टिकल्स आए हैं वो आप लोग देख लेंगे। इसके साथ ही साथ एक और आर्टिकल है राष्ट्रीय सहारा का, जिसका शीर्षक है कबूतरबाजी के शिकार, यानी कि हमारे जो श्रमिक हैं दूसरे देशों में जाते हैं भारतीय वहां काम करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए, तो प्लेसमेंट एजेंसियां जो इनको भेज देती हैं एक तरह से अवैध रूप में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट, तो इसी को कहा जाता है कबूतरबाजी, हिंदी में कह दिया गया है। अब होता यह कि ये वहां चले जाते हैं और जाने के बाद इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इनको वैध नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में न तो एम्बेसी इनके लिए कुछ कर पाती है, न भारत सरकार इनके लिए कुछ कर पाती है, और न ही वहां की सरकार के पास इनका कोई रिकॉर्ड होता है। खासकर ये टॉपिक अभी जो इराक में कुछ भारतीयों के शव मिले हैं, आपने देखा 38 भारतीयों के शव जो कई साल पहले जो आईएसआईएस ने उनका अपहरण करके जो हत्या कर दी थी, उसके कारण थोड़ा सा यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे जो श्रमिक बाहरी दूसरे देशों में जा रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से, कैसे सरकार इन्हें नियंत्रित करे, इन पर किस तरीके, इस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। नो डाउट कि श्रमिक जाएं, लेकिन उन्हें कैसे वैध तरीके से भेजा जा सके। तो मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, और भी दूसरे आर्टिकल्स हैं, आप सब देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं। अभिषेक पांडे इलाहाबाद से, वैभव श्रीवास्तव, साहिल कृष्ण जम्मू से, मोहम्मद महबूब आलम, मधु कुमारी और ब्रजेश ठाकुर शिमला से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।